अध्याय तीन। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोहितो मेरे कवित्त बनावत। गणानंद और अन्य रीति मुक्त कवि भी रीतिबद्ध लक्षणकार कवियों के भांति ही तत्कालीन युग चेतना से जुड़े हुए थे। तत्युगीन राष्ट्रोन्मुख सामंती समाज के मानवीय सामाजिक संबंधों के अंतर्गत रहकर ही इन कवियों की स्वच्छंदता और मुक्ति की कल्पना को आकार मिला था। घनानंद के साथ ही अधिकांश रीति मुक्त कवियों को राज दरबारों का आश्रय ग्रहण करना पड़ा था। यद्यपि कवि के रूप में घनानंद ने किसी राज दरबार का आश्रय ग्रहण नहीं किया, फिर भी मोहम्मद शाह के दरबार से संबद्ध कर्मचारी होने के नाते जाने अनजाने कुछ दरबारी प्रभाव उन पर अवश्य था। बोधा पन्ना नरेश के आश्रित कवि थे और आलम को बहादुर शाह का आश्रय मिला था। ठाकुर कई राज दरबारों से संबद्ध रहे, लेकिन किसी प्रलोभन में अपनी स्वच्छंदता पर उन्होंने कभी आँच नहीं आने दी। कहा जाता है कि एक बार बांदा नरेश हिम्मत बहादुर ने अपने भरे दरबार में ठाकुर को कुछ कटु वचन कह दिया था। इससे क्रुद्ध होकर ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाल ली थी और कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेकुन जीव न मुरके, नीत दिनवारे हम ही के महिपालन को, ही के विशुद्ध हैं सने ही साँचे उर के, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दमाधे अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं पहचाकर चतुर के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास पर संख्या 362। इन सभी रीति मुक्त कवियों ने युग के प्रमुख काव्य प्रवृत्ति श्रृंगार को ही अपने काव्य का विषय बनाया। युगीन काव्यधारा से मध कर भी ये कवि रीति या परंपरा के अंधानुयायी नहीं बने। जहाँ इन्होंने आवश्यक समझा मारूढ़ परंपरा को, चाहे वह सामाजिक हो या कथा की यथाशक्ति तोड़ने का प्रयास किया। कायस्थ घनानंद ने सुजान नामक मुसलमान वेश्या से प्रेम किया, जिसके लिए उन्हें राज दरबार की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न बोधा ने सुभान नामक मुसलमान वेश्या को जीवन संगनी बनाया। ब्राह्मण आलम ने शेख नामक मुसलमान रंगरेजिन से प्रेम विवाह किया। इस प्रकार इन सभी कवियों ने प्रचलित सामाजिक विधि निषेधों का उल्लंघन करने का साहस दिखाया है। इसके विपरीत चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मतिराम, पद्माकर आदि सभी रीतिबद्ध कवियों ने सामाजिक विधि निषेधों के अनुकूल जीवन यापन किया था। उस समय के दरबारी वातावरण में यह संभव ही नहीं था कि सामाजिक आचार विचार की अपेक्षा करके कवि, कलाकार या कोई व्यक्ति दरबार में रह सके। यहाँ यह स्मरणीय है कि घनानंद की स्थिति अपने समकालीन रीतिमुक्त कवियों से भी पर्याप्त भिन्न थी। बोधा ने अंततः सुभान को प्राप्त किया, आलम ने शेख के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया, किंतु घनानंद सुजान द्वारा ठुकराए गए। जीवन में इनका प्रेम एक तरफा या विषम सिद्ध हुआ। फलस्वरूप अपने काव्य में भी इन्होंने अनुभयनिष्ठ विषय प्रेम की वेदना को विस्तार दिया है। वैसे अन्य रीति मुक्त कवियों में भी विषम प्रेम की पीड़ा के दर्शन होते हैं, लेकिन रीतिबद्ध कवियों के भांति ही इनमें उभयनिष्ठ प्रेम का पर्याप्त चित्रण भी मिलता है। इस प्रकार अपने जीवन के भांति ही अपने काव्य में भी अन्य सभी रीतिकालीन श्रृंगारी कवियों से घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रचना के स्तर पर भी रीतिबद्ध कवियों ने घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट है। रीति कवियों में संयोग वियोग के वर्णन के अंतर्गत जो तल्लीनता मिलती है वह वियोग वर्णन में नहीं। इसके साथ ही पूर्ववर्ती काव्यशास्त्रीय परंपरा के आधार पर विभिन्न अलंकारों, नायिकाओं के लक्षणबद्ध स्वरूप प्रस्तुत करने के कारण उनके काव्य में पर्याप्त कृत्रिमता आ गई है। आत्मानुभूति की अपेक्षा शास्त्र स्थिति संपादन को अधिक महत्व देने के कारण उनकी काव्य दृष्टि प्राय बाह्यार्थ निरूपण पर ही अधिक रही है। फलस्वरूप संयोग में बाहरी उछलकूद, वियोग में ताप की ऊपरी नापजोक, अतिरंजित कृष्णता और सौंदर्य वर्णन में सांचे में ढाले ढलाए प्रभाव शून्य मात्राबोधक चित्र ही उनमें अधिक मिलते हैं। बाह्य रीतियों के बंधन से अधिक जकड़ा होने के कारण रीतिबद्ध कवियों का काव्य हृदय की विभूति न बनकर अभ्यास जन्य क्रीड़ा कौशल बन गया है। इसके विपरीत घनानंद का काव्य वियोग प्रधान है। विषय प्रेम के कारण उनकी वेदना में एक विशेष प्रकार की असहाय और कातर पुकार मिलती है। सहानुभूति के स्तर पर चित्रित होने के कारण यह विषमता अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर अधिक उन्मुख है। इसके साथ ही इस वेदना का केंद्र कोई नायक नायिका न होकर कवि का आत्म या स्व है, अतः इसके आग्रह अनुरोध आत्मनिवेदन के रूप में पाठक के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। फलस्वरूप घनानंद के यहाँ कवि के साथ पाठक का सीधा संपर्क होता है, जिसका रीतिबद्ध कवियों में पर्याप्त अभाव है। वियोग की भांति ही संयोग वर्णन में भी रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का पार्थक्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मिलन आदि के प्रसंगों में रीति कवियों की भांति इनकी दृष्टि स्थूल चेष्टाओं और कामोत्तेजक अश्लील विवरणों में ही की ओर नहीं गई है। इनके संयोग वर्णन में भी एक विशेष प्रकार की तल्लीनता और गांभीर्य आद्यतन बना रहता है। इनका प्रेमी वियोग की भांति ही संयोग में भी अशांत और व्याकुल बना रहता है। इसलिए घनानंद के संयोग और वियोग दोनों के चित्रण में एक स्वस्थ आचार निश्चयता का सन्निवेश हो गया है, जिसका अधिकांश रीतिबद्ध कवियों में अभाव दिखाई देता है। काव्यशास्त्रीय बंधनों में जकड़ कर रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम को भी बहुत कुछ रूढ़िबद्ध बना दिया है। एक निश्चित प्रकार की नायिका तथा निश्चित अलंकार के लक्षणबद्ध स्वरूप के आग्रह के कारण उनके यहाँ प्रेम की तीव्रता ही नहीं मारी गई है, वरन वह प्राय अस्वाभाविक भी बन गया है। इसके साथ ही नायक नायिका के बीच द्वितीया सखी के रूप में एक मध्यस्थ के विधान द्वारा रीतिबद्ध कवियों ने प्रेम को एक पीड़ापरक व्यापार की कोटि में ला दिया है। वस्तुतः इस प्रकार की मध्यस्थता समंती समाज के मानवीय सामाजिक संबंधों के आचार व्यवस्था के आग्रह अनुरोधों पर आधारित थी। मानव संबंधों के उस दायरे में केवल प्रेमी ही नहीं, युवा पति का भी प्रेमी का या पत्नी से घर परिवार या अन्य लोगों के सामने मिलना या बातचीत करना सामाजिक आचार के विरुद्ध था। यह सामाजिक आचार रीति कवियों के काव्य में एक रूढ़ी बनकर आई है। घनानंद के साथ ही सभी रीतिमुक्त कवियों ने इस रूढ़ी का उल्लंघन किया है। इनके यहाँ नायक नायिका के मध्य संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में एक सीधा संपर्क है। रीतिमुक्त ठाकुर की नायिका तो दूती को सीधे फटकारते हुए कह उठती है, वह है नहीं मुर्गा जही गाँव सखी तई गाँव कभोर न वही हैं, अर्थात जहाँ दूती नहीं होंगे वहाँ क्या प्रिय से मिलम ही नहीं होगा। घनानंद ने भी अपने काव्य में मध्यस्थ के रूप में सखी या दूती का विधान नहीं किया है। इन्होंने प्रेम के मध्य दौत्य कर्म को अस्वाभाविक मानते हुए विरही की व्यवस्था को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। पाते मदी छाती छत लिखित न लिखाए जाहीं, कांति ले विरह धांति कीने जैसे हाल हैं, आंगुरी बहा की तहा पांगुरी की लकी होती, ताती राती दसनी के जाल ज्वाल माल हैं, नेह भीजी बातें रसना पे ऊर आँच लागे, जागे घनानंद ज्यो पुंजनी मसाल हैं। विरह वेदना ने हृदय की जो दुर्दशा कर रखी है उसमें न प्रिय को पत्र लिखा लिखाया जा सकता है और न ही हमारे द्वारा कोई दूसरा संदेश ही भेजा जा सकता है। घनानंद ने यदि कहीं दौत्य कर्म का उल्लेख किया भी है तो उसे अत्यंत अस्वाभाविक और अप्रत्याशित रूप में ही। जहाँ ते पधारे मेरे नयनन की पाँव धारे, बारे ये बिचारे प्राण पैंड पैंड पैपन मनो, आतुर न हो तो हाहा नेकू पेट छोरी बैठो, मोही व विशासी को है ब्योर बुझी बोघनो, हाय निर्दयी की हमारी सुधि कैसे आई, कौन विधि दीनी पाती दीनी जानी कई भनो, झूठ की सच्चाई छक्यो त्यों हित कचाई पाक्यो, ताके गुणगान घानंद कहाँ गनो। यहाँ कवि ने विषम प्रेम से उत्पन्न प्रेमी की आशंका और सुख के दैन आदि के साथ ही एक निश्चयता का भी बड़े ही स्वाभाविक और मार्मिक ढंग से अंगन किया है। घनानंद के काव्य में प्रेमी और प्रिय के मध्य किसी तीसरे की मध्यस्थता की व्यवस्था नहीं मिलती। इस दृष्टि से यह कवित्व एक अपवाद है, लेकिन इसमें भी दूत दूती के विधान के प्रति कवि का अपेक्षा भाव ही प्रकट हुआ है। प्रिय द्वारा भेजे गए दूत को देखकर नायिका का आश्चर्य होता है और प्रिय द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़कर जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा दूत के मुख से ही वास्तविकता को जानना चाहती है। दूत को विश्वास में लेते हुए कहती है, तुम यहाँ से पधारे हो, मेरे पलक पावने पर ही चलकर आए हो, मेरे नेत्रों ने तुम्हारे पग पग पर अपने प्राण निछावर किए। यहाँ प्रिय के प्रति अपने प्रेमाधिक की व्यंजना के साथ ही दूत के समुचित सत्कार का भाव भी व्यंजित है। नायिका संदेशवाहक के प्रति पूरा सौजन्य प्रकट करते हुए उससे कुछ देर तक विश्राम करने का भी निवेदन करती है। वह संदेशवाहक से कहती है कि आप इतनी दूर से चलकर आए हैं तो भी अभी जाने की जल्दी न करें, थोड़ी देर आराम से बैठें, इससे आपको आराम भी मिल जाएगा और मेरा कुछ काम भी सिद्ध हो जाएगा। मुझे उस विश्वासघाती के संबंध में बहुत कुछ पूछना है। यहाँ ब्योरो घनो पद में ब्योरे का आधिक्य तो है ही, उसके उलझन पूर्ण होने का भी संकेत है। इतना निष्ठुर प्रिय जिसने एक लंबी अवधि तक कोई खोज खबर नहीं ली थी, आज का ये कितना उदार कैसे बन गया कि अपने हाथ से पत्र लिखकर दूत द्वारा संदेश भेज रहा है। इससे भी रहणी के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। अतः सबसे पहले वह यह जानना चाहती है कि उस निष्ठुर को मेरी याद कैसे आई। यहाँ कौन विधि दीन पाती बड़ा ही व्यंजक प्रश्न है। इसके माध्यम से वह जानना चाहती है कि जिस समय उसने पत्र दिया उस समय वह क्या कर रहा था, किसके साथ था, मेरी याद उसे किस प्रसंग में आई, क्या कहना कहकर उसने पत्र दिया। कोई मौखिक संदेश हो तो उसे भी सुनाए, क्योंकि इन्हीं बातों से वास्तविकता का अनुमान किया जा सकता है। प्रिय के वास्तविक चित्रण के प्रति संदेशवाहक को सावधान करते हुए विराहणी कहती है, वह झूठ की सच्चाई में छका हुआ अर्थात अत्यंत झूठा और प्रेम के कच्चेपन में पूरी तरह परिपक्व है, उसके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार प्रिय के कच्चे चिट्ठे को खोलकर वह दूत का विश्वास प्राप्त करना चाहती है, जिससे प्रिय से संबंध वास्तविकता का सही पता चल सके। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि प्रिय द्वारा भेजे गए पत्र के प्रति विरहणी की कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, उसे पढ़ने की उत्सुकता भी उसमें नहीं दिखाई देती। इसके विपरीत रीतिबद्ध कवियों की विरहणियाँ प्रिय द्वारा भेजे गए पत्रों को अपने जीवन के सबसे अमूल्य निधि के रूप में संभाल कर रखती हैं। इसके साथ ही खंडिता आदि के प्रसंगों में मान मनोवल से लेकर वियोग की अन्यान्य स्थितियों में रीतिबद्ध कवियों ने सखी या दूती को महत्वपूर्ण भूमिका में प्रस्तुत किया है। भाव विधान के साथ ही घनानंद ने रूप विधान या शिल्प की दृष्टि से भी रीतिबद्ध कवियों से अपना पार्थक्य दिखाया है। रीतिबद्ध कवियों ने कवि वर्णन परिपाटी के अंतर्गत स्वीकृत उपमानों के प्रयोग द्वारा भावों को एक प्रकार से जकड़ दिया है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन के माध्यम से ठाकुर ने इस प्रवृत्ति का अत्यंत कटु प्रतिवाद किया है। केवल विभावना पक्ष के चित्रण में ही नहीं, वरन भाव पक्ष के चित्रण अर्थात विभिन्न भाव स्थितियों और मनोदशाओं के चित्रण में भी रीति कवियों ने बधे बधाए उपमानों का ही सहारा अधिक लिया है। जैसे वियोग और संयोग की चरम दशा को उन्होंने विचरणी मीन की और मिलनी पतंग की आदर्श द्वारा प्रकट किया है। वीरो प्रेम पर मर्मितो यही उनका प्रेम आदर्श दिखाई देता है, अर्थात संयोग और वियोग दोनों स्थितियों में क्रमशः मछली और पतंग की तरह प्राण त्याग देना ही उनके लिए परमादर्शक बन गया है। रीतिमुक्त कवियों ने इसे प्राय अस्वीकार किया है। ठाकुर ने संयोग और वियोग दोनों के संबंध में लिखा है, कवि ठाकुर आपन चातुर सो सबही सब भांति बखानतु हैं, पर वीर मिले बिछुरे की विथा मिलिकय बिछुरे सोई जानतु है। संयोग और वियोग के मार्मिक स्थितियों को वर्णन चातुर्य के द्वारा व्यक्त करना ठाकुर की दृष्टि से अस्वाभाविक है। करानंद ने तो बिछुरनी मीर की और मिलनी पतंग की के आदर्श पर ही सीधे आक्षेप किया है। अरे वह विश्राम गणय वह तो यह बापुर मीत तजो तरसय, वह रूप छटा न सहारि सकय, यह तेज तवय चितवय बरसय, घन आनंद कौन अनोखी दशा मति आवरी बावरी मय थरसय, बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ तो जिय की गति कौ परसय। वियोग संयोग में मीन और पतंग की स्थिति प्रेमी की वास्तविक स्थिति का स्पर्श मात्र भी नहीं कर पाती, क्योंकि मछली प्रिय से वियुक्त होकर मरने में ही विश्राम मानती है, लेकिन प्रेमी प्रिय से वियुक्त होकर भी उसके लिए जीता और तरसता रहता है। पतंग संयोग काल में प्रिय के सौंदर्य अधिक के प्रकाश से अभिभूत होकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, जबकि प्रेमी प्रिय के सौंदर्य के ताप में तपते हुए उसे देखता है और निरंतर आनंदाश्रु विगलित करता रहता है। अतः प्रेमी की साहसिकता का उन दोनों में सर्वथा अभाव है। मछली की कायरता और जड़ता का अलग से उद्घाटन करते हुए घनानंद ने लिखा है, हीन भयो जल मीन अधीन कहाँ कुछ जो अकुलानी समानय, नीर स्नेह कुलाय कलंक निराश वह कायर त्याग प्राणय, प्रीति की रीत सुख्यों समझे जड़मीत के पानी परय को प्रमाणय, या मन की जो दशा घनानंद जीव के जीवन जान ही जान है। मछली कायर है क्योंकि अपने प्रिय से वियुक्त होते हुए प्राण त्याग देती है, उसका मित्र जल भी जड़ है, अतः चेतन प्रिय से उसकी तुलना ही क्या। यहाँ कवि ने चेतन प्रिय की उपेक्षा को धैर्यपूर्वक वहन करने वाले प्रेमी की विषम पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अदृश्य उक्त सादृश्य को अनुपयुक्त सिद्ध करते हुए रीतिबद्धता का विरोध किया है। घनानंद की रचनाओं में इस प्रकार के विरोध के स्वर यथा स्थान स्थान पर मिलते हैं। अधिकांश रीति कवियों ने प्रेम की विषमता के उद्गार द्वारा ही प्रेम की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है, लेकिन घनानंद ने इस विषमता को सूफियों के विशेषकर फारसी साहित्य की भांति आत्मानुभूति के स्तर तक उतारा है। इनके यहाँ के विरह निरीहिता के निष्क्रियता स्थिति न होकर एक कठिन साधना की स्थिति, जिसमें विरही एक साधक की तरह आत्मपीड़न में लीन दिखाई देता है। आशा गुण बांध के भरोसे सिल धरी छाती, पूरे कन सिंधु में न बुड़त सकाय हो, दुख दय हुए जारी अंतर अंधे गांच, रोम रोम त्रासनी निरंतर तचाय हो, लाख लाख भातिन की विरह दशानी जानी, सास सहारी सिर आरे लो चलाए हो, ऐसे घन आनंद गही टेक मन माहे, ऐसे निर्दयी तो ही दया उपजाय हो। प्रेम साधना में यह आत्मान पीड़त प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए है। इस प्रिय के हृदय में जो कि अत्यंत निष्ठुर है, लाख लाख भांति की तरह विरह दशाओं को जानकर उन्हें साहसपूर्वक झेलना कुछ वैसा ही है जैसे अनेक साधना पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त कर ईश्वर प्राप्ति का प्रयास। प्रेम और भक्ति दोनों ही क्षेत्रों के लिए फारसी साहित्य की देन है। विषय प्रेम की इस गंभीरता और साहसिकता का रीतिबद्ध कवियों में सर्वथा अभाव है। संयोग चित्रण में भी घनानंद रीति कवियों यहाँ तक कि रीति मुक्त काव्यधारा के अन्य कवियों से भी पर्याप्त भिन्न दिखाई देते हैं। इस संबंध में उनकी स्पष्ट स्थिति है। अनु की हिलक दैया बिछड़े तो मिल्यो चाहे, मिले हूँ मैं मार जा रे खरक वियोग की। अतः संयोग में भी घनानंद के यहाँ वियोग की आशंका चैन नहीं लेने देती। इस विशिष्ट स्थिति के लिए उनकी जीवनगत परिस्थिति उत्तरदायी है। इन्हें क्षणिक संयोग के बाद शाश्वत वियोग मिला था। वह परिस्थिति रीतिबद्ध कवियों को नहीं प्राप्त हुई थी और रीतिमुक्त कवियों को पर्याप्त भिन्न रूप में मिली थी। रीतिबद्ध अधिकांश कवि स्वयं प्रेमी जीव नहीं थे। व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें प्रेम के विभिन्न पक्षों का अनुभव नहीं प्राप्त हो सका था, इसलिए उनका प्रेम चित्रण अधिकांशतः काव्य एवं काव्यशास्त्री परंपरा से अर्जित जानकारी पर आधारित था। रीतिमुक्त कवियों में अधिकांश को प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का व्यक्तिगत अनुभव अवश्य था, लेकिन अंततः उनका प्रेम अभिनिष्ठ संयोग में ही पर्यवसित हुआ। परंतु घनानंद को अत्यल्प कालिक संयोग के बाद स्थायी रूप से वियोग को झेलना पड़ा था और सुजौन की निर्मम उपेक्षा के कारण वह जीवन में एक तरफा ही सिद्ध हुआ। इनका अधिकांश काव्य इस वियोग काल में ही लिखा गया है, अतः इसमें वियोग का चित्रण वियोग की गहरी छाया से अनुशासित है। अपनी भाव संपदा के साथ ही भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से भी घनानंद अपने समकालीन कवियों से पर्याप्त भिन्न दिखाई देते हैं। सजी समरी अत्यंत व्यंजक एवं लोकोक्ति मुहावरों से युक्त व्याकरण सम्मत ब्रजभाषा, चित्रूपों एवं लाक्षणिक विश्लेषण, सूक्ष्म भावों का सम्मूर्तन, विरोधाभास एवं विरोध वैचित्र, प्रयोग वैचित्र, गहन अर्थगर्भित श्लेष, भावानुकूल एवं लयपूर्व अनुप्रास योजना आदि सभी दृष्टियों से घनानंद पूरे रीतिकाल में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास पर संख्या 320।